पृष्ठ संख्या 43 अध्याय 6 जागृति। जीवन के लिए जागना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी सोना है। दोनों क्रियाएं एक दूसरे के सहारे पर हैं। नींद का आना भी एक बीमारी है जिससे अनेक प्रकार की बाधाएं आ सकती हैं। और जो प्राण रात दिन सोता ही रहे वह तो मरा सा ही है। यदि दोनों क्रियाएं एक दूसरे की सहायता करती रहे, आदमी जागे कर्म करने के लिए, सोए विश्राम करने के लिए, तो जीवन सुखी होता है। लेकिन जागना जीवन का मुख्य लक्षण है। सोना अर्थात विश्राम तो केवल उसका सहायक है। इसीलिए जागृति जीवन और अभ्युदय का चिन्ह है और निद्रा पतन तथा ह्रास का। जागृति रज प्रधान क्रिया है, निद्रा में तम की प्रधानता होती है। कम से कम सोने के लिए अनेक उपाय और साधन बताए गए हैं। अधिक से अधिक सोने के लिए आज तक किसी ने कोई उपाय नहीं बताया। उसी तरह जैसे स्वस्थ रहने के लिए तरह तरह के प्रयत्न किए जाते हैं, पर बीमारी के लिए भी किसी ने कोई प्रयत्न किया है ऐसा कभी सुनने में नहीं आया। वास्तव में स्वास्थ्य का न होना ही बीमारी है। उसी तरह जैसे प्रकाश का न होना ही अंधकार है। आदमी जितना ही कम सोए उतना ही जागरूक है। यहाँ तक कि कई विद्वानों का मत है सोना कोई आवश्यक क्रिया नहीं। संभव है तपस्वियों के लिए सोना आवश्यक न हो, उनकी प्रकृति में रज और सत ही रह जाता हो, तम की सर्वथा हानि हो जाती हो। पर साधारण प्राणियों के लिए भी यही नियम लागू है कि मात्रा से अधिक सोने में हानि है। अतएव जब हम किसी राष्ट्र के विषय में जागृति की कामना करते हैं तो इसका बोध यह होता है कि वह राष्ट्र मात्रा से अधिक तमोगुणी हो गया और उसमें जीवन की मात्रा जरूरत से कम है। हम इस तत्व को मानते हैं कि हमारे लिए जागृति की बहुत बड़ी जरूरत है, लेकिन उस जागृति का, उस अभ्युदय का रूप क्या हो, इस विषय में अभी हम में थोड़ा मतभेद है। अनेक विचारक अनेक सिद्धांत बताते हैं। हम जागरण के 2-4 अंकों में इसी विषय की विवेचना करना चाहते हैं। सबसे पहले यह जरूरी है कि हम यह समझ लें हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। जब तक हम इसका निश्चय न कर लें हम जागृति का रूप स्थिर नहीं कर सकते। जैसे प्राणियों में प्रकृति भेद होता है और कभी कभी ऐसा होता है कि जो वस्तु एक आदमी के लिए अमृत है वही दूसरे आदमी के लिए घातक विष है, वैसे ही जातियों में भी प्रकृति भेद होता है। इसके अनेक कारण हो सकते हैं। देश की प्राकृतिक अवस्था, जलवायु की विभिन्नता, परंपरा की विशेषता आदि। यदि हम इन परिस्थितियों को अपना दीपक न बनाएंगे, अपना मार्ग ऐसा न बनाएंगे जो इन हालातों के अनुकूल हो, तो बहुत संभव है कि हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के बदले दिन दिन उससे दूर होते जाएं। पृष्ठ संख्या 44। हमारी संस्कृति जो सनातन से चली आती है उसी के आधार पर हमें चलना होगा, क्योंकि संस्कृति केवल इन्हीं परिस्थितियों का समन्वय मात्र है। यो कहना चाहिए कि संस्कृति का जो कुछ रूप है वह इन्हीं परिस्थितियों का बनाया हुआ है। जब हम उस संस्कृति पर विचार करते हैं तो मालूम होता है वह कर्तव्य प्रधान, धर्म प्रधान, परमार्थ प्रधान, अहिंसा प्रधान, व्रत और नियम प्रधान संस्कृति है। उसमें व्यक्ति और समष्टि के सामंजस्य का ऐसा विधान है कि एक दूसरे का शत्रु न होकर सहायक बनी रहे। व्यक्ति के लिए धन और शौर्य प्राप्त करने की पूरी स्वाधीनता है, पर उसका उपयोग समाज और राष्ट्र के हित के लिए होना चाहिए। भोग विलास अथवा निर्बलों पर प्रभुत्व जमाने के लिए नहीं। अहिंसा परमो धर्मः और वसुधैव कुटुंबकम्, यह 2 सूत्र हमारी संस्कृति के मूल तत्व हैं और इस अधो अवस्था में हम उन्हें अपनाए हुए हैं। यद्यपि अनेक कारणों से उस संस्कृति का रूप विकृत हो गया है, उसमें असंख्य बुराइयां घुस गई हैं, यहाँ तक कि अब उसका रूप पहचाना नहीं जा सकता, फिर भी यह तत्व प्रकाश स्तंभों की भांति अभी भी प्रतिकूल दशाओं का सामना करते हुए खड़े हैं। बहुत कुछ खो चुकने पर भी अब तक हम में जो कुछ रह गया है वह उन्हीं प्रकाश स्तंभों का प्रसाद है। अन्यथा अब तक हमारी नौका न जाने कब की भंवर में पड़कर डूब चुकी होती। इस कथन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि हमारे जीवन का उद्देश्य प्रभुत्व की प्राप्ति नहीं बल्कि परमार्थ संचय है। हमारे जीवन का आदर्श स्वार्थ की अंधी उपासना नहीं, संसार की निधि को समेट कर अपनी थैली में भर लेना नहीं, वरन संसार में इस तरह रहना है कि हमसे किसी को हानि न हो, किसी को कष्ट न हो, किसी का गला न दबे। हमारे आदर्श चरित्र नेपोलियन जैसे नहीं जो संसार पर अधिकार प्राप्त करना चाहता था, न क्लाइव या क्रॉमवेल जैसे, लेनिन या मुसोलिनी जैसे। हमारे आदर्श चरित्र कृष्ण और राम और अशोक जैसे राजा, अर्जुन और भीष्म जैसे योद्धा और गांधी जैसे गृहस्थ हैं। हमारा विश्वास संघर्ष में नहीं सहयोग में है। कहा जाता है कि सिद्धांत रूप से सभी संस्कृतियां एक सी हैं, पूर्व और पश्चिम में कोई अंतर नहीं। वही अहिंसा और प्रेम और सेवा जो हमारी संस्कृति का मूल तत्व है, पश्चिमी संस्कृति का भी मूलाधार है। जो कुछ अंतर है वह नई और पुरानी संस्कृति में है, पश्चिम की पुरानी संस्कृति में है। पश्चिम की पुरानी संस्कृति हमारी संस्कृति से अभिन्न थी। जब से पश्चिम में कलों का युग आरंभ हुआ, तभी से वहाँ की संस्कृति में स्वार्थ और संघर्ष की प्रधानता हुई। यद्यपि यह कथन बिल्कुल सारहीन नहीं है, फिर भी पश्चिमी संस्कृति का जो उद्गम स्थान है यानी यूनान और रोम, वह संघर्ष प्रधान राष्ट्र था। ईसाई धर्म जो मूल में बौद्ध धर्म और बहुत अंशों में हिंदू धर्म का ही रूपांतर है, पश्चिम में उस पौधे के समान था जो कहीं विदेश से लाकर आरोपित किया गया हो। कुछ दिनों तक तो उसने अपने भीतर की शक्ति से बाहर की प्रतिकूल शक्तियों का सामना किया, फिर वह नष्ट हो गई। विदेशी पौधा उस प्रतिकूल जलवायु में फल फूल न सका। पृष्ठ संख्या 45। आज पश्चिमी ईसाई कहलाते हुए भी ईसाइयत से कोसों दूर है। ईसाइयत की दया और अहिंसा का वहाँ कहीं नाम भी नहीं। रोम और यूनान के कवि दार्शनिक योद्धा तो प्रसिद्ध है, पर कोई त्यागी महात्मा था इसमें संदेह है। वह भोग प्रधान संस्कृति थी और राष्ट्र के सभी अंग अधिक से अधिक भोगने के लिए लालायित रहते थे, जिसका परिणाम आपस के संघर्ष के सिवा और हो ही क्या सकता था। भारत में हमें प्राचीन काल में ऐसे संघर्ष का पता नहीं मिलता। इसका कारण या तो यह हो सकता है कि यहाँ शक्तिशालियों ने दुर्बलों को इतना कुचल डाला था कि उनमें फरियाद करने की सामर्थ्य न थी, या यह कि त्याग और सेवा भाव का इतना प्रसार था कि संघर्ष को पनपने के लिए कोई अवसर ही न मिलता था। देवताओं और असुरों में लड़ाइयों की कथाएं मिलती हैं, लेकिन वह स्वार्थ का संघर्ष न था बल्कि सिद्धांत का था। असुर भोगवादी थे, देवता त्यागवादी। देवता जब लड़े आत्मरक्षा के लिए, असुरों को परास्त करके उन पर रौब जमाने का भाव कभी उनके मन में न आया। यूरोप में इसके प्रतिकूल स्वार्थ का संघर्ष था। गरीबों और अमीरों की, शासकों और शासितों की लड़ाई थी। उसी संघर्ष की छाप पश्चिमी संस्कृति के हर एक अंग पर लगी हुई है। ईसाई धर्म ने अनेक सदियों तक उस स्वाभाविक मनोवृत्ति को दबाए रखा, अंत में वह भी परास्त हो गई। अतएव यूरोप के जीवन में आज जो स्वार्थ का उन्माद है, यह उसकी स्वाभाविक और सनातन मनोवृत्ति है। बार बार क्रांति का होना उसी स्वार्थमय संघर्ष का परिणाम था। हमने यूरोप के संघर्ष और भारत के अहिंसा और प्रेम की चर्चा की थी। हमारी संस्कृति का मूल तत्व अहिंसा है, पश्चिम की संस्कृति का मूल तत्व संघर्ष है। यह बात नहीं है कि पश्चिम में अहिंसा भाव का अस्तित्व नहीं या भारत में संघर्ष कोई अनोखी बात है, लेकिन हमें यहाँ अपवादों से बहस नहीं। पश्चिमी जीवन की नस नस में अणु अणु में संघर्ष भरा हुआ है, उसी तरह भारतीय जीवन के अंग अंग में अहिंसा और धर्म बसा हुआ है। संसार की विभूतियों पर अधिकार पाने के लिए और उन्हें भोगने के लिए संघर्ष और संग्राम अनिवार्य है। अहिंसा से तो केवल संतोष और त्याग और निवृत्ति का ही विकास होता है। यूरोप का विजेता किसी संग्राम में विजय प्राप्त करने के बाद उस विजय से अधिक लाभ उठाने का प्रयत्न करता है। यहाँ अर्जुन विजय प्राप्त करके ग्लानि और विराग में डूब जाते हैं, अशोक प्रभुता के शिखर पर पहुंचकर भिक्षुक बन जाता है और धर्म के प्रचार में अपना जीवन सार्थक करता है। संघर्ष में गोलबंदी होती है, अन्यथा एक वर्ग दूसरे वर्ग को चट कर जाए। इसीलिए प्रत्येक वर्ग अपना संगठन करता है और अपने स्वार्थों की रक्षा करने के लिए बराबर प्रयत्न करता रहता है। भारत में इस तरह की गुटबंदी का प्रमाण नहीं मिलता। किसी वर्ग को दूसरे वर्ग से इतना भय न था कि वह अपना संगठन करता। प्रत्येक वर्ग का कार्य क्षेत्र नियत था, उस क्षेत्र के अंदर वह अपना जीवन व्यतीत करता था। ब्राह्मण समाज और राष्ट्र का नेता था, इसीलिए नहीं कि उसमें धन बल था या बाहुबल था, इसीलिए कि उसमें ज्ञान बल था। वैश्य धन कमाता था, पर उस धन को जनहित में खर्च करता था। पृष्ठ संख्या 46। मनोवृत्तियाँ कुछ इस तरह की हो गई थी कि लोग अधिकारों की अपेक्षा अपने कर्तव्यों का ज्यादा विचार रखते थे। उस वक्त का राजा केवल सिंहासन की शोभा न बढ़ाता था, बल्कि उसे रात दिन प्रजा के हित की चिंता रहती थी। वह नित्य अपने समय का कुछ न कुछ भाग प्रजा का दुख दर्द सुनने में व्यतीत करता था, जिससे प्रजा में उसके प्रति भक्ति और श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता था। जमींदार केवल किसान से लगान वसूल करके चैन न करता था, बल्कि प्रजा के हित की रक्षा करता था। कुएं और तालाब खुदवाना, अकाल और दुर्भिक्ष के समय प्रजा के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर देना उसका धर्म था। अवश्य ही लोभी जमींदार भी होंगे, लेकिन समाज में वे बदनाम रहते थे और इसीलिए उन्हें प्रजा पर अत्याचार करने का साहस न होता था। इसके विपरीत पश्चिम में स्वार्थ और लोभ का राज है। कलों के आविष्कार ने व्यावसायिकता की एक हवा सी फैला दी है। यह व्यावसायिकता पश्चिमी सभ्यता का कलंक है। संसार का जितना अहित इस व्यवसायवाद से हुआ है और आगे होगा, वह अभूतपूर्व है। इसी का यह कुपरिणाम है कि जो लोग अपने घरों में बैठकर अपना काम करते थे, वे अब मिलों में आकर गुलामी करने पर मजबूर हैं। मिल का स्वामी उनसे अधिक से अधिक काम लेकर कम से कम मजदूरी देना चाहता है, और यह संघर्ष यहाँ तक जोर पकड़ गया है कि यूरोप के प्रत्येक देश में इसे उखाड़ फेंकने का प्रयत्न जोरों से हो रहा है। रूस ने तो उसे उखाड़ ही दिया, पर अन्य देशों में भी कम या ज्यादा संघर्ष छिड़ा हुआ है। मिलों में थोड़े से मजूर बहुत से आदमियों का काम कर लेते हैं, इसीलिए बहुत से लोग बेकार रहते हैं। इस बेकारी को दूर करने के लिए मिलों में ज्यादा माल बनाना पड़ता है और उस माल की खपत के लिए बाजार खोजे जाते हैं। व्यवसायवाद और साम्राज्यवाद इस तरह एक स्थान पर आकर मिल जाते हैं। व्यापारियों को माल की खपत के लिए ऐसा बाजार चाहिए जहाँ उनका माल बेरोक टोक बिक सके। इसीलिए कुछ देशों को अपने अधीन रखना उनके लिए अनिवार्य हो जाता है। उनका स्वार्थ इसी में होता है कि उस देश में वाणिज्य व्यवसाय की उन्नति न हो, अन्यथा उनके माल की बिक्री में बाधा होगी। यूँ कहना चाहिए कि वर्तमान शासन व्यापारियों के ही हाथ में है। सरकार उन्हीं के बल पर चलती है। उन्हीं की स्वार्थ रक्षा के लिए बड़ी बड़ी सेनाएं रखी जाती है, खून की नदियां बहाई जाती हैं। यूरोप का महाभारत इसके सिवाय और क्या था? ओटावा सम्मेलन इसके सिवा और क्या है? इस व्यवसायिक संस्कृति ने कल प्रधान राष्ट्रों के लिए लाजिम कर दिया है कि उनके अधिकार में पराधीन राष्ट्रों की अधिक से अधिक संख्या हो। इस संघर्ष का सबसे अच्छा उदाहरण वर्तमान पार्टी गवर्नमेंट है। राष्ट्र कई राजनैतिक दलों में विभाजित हो जाता है और जिस दल के प्रतिनिधि अधिक संख्या में होते हैं, उसी के हाथ में शासन आ जाता है। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि राष्ट्र की सारी शक्ति उस पार्टी के हाथ में आ जाती है जिसमें उस राष्ट्र के एक तिहाई, चौथाई या इससे भी कम आदमी होते हैं। पृष्ठ संख्या 47। वहाँ के संघर्ष में मनोवृत्ति किसी ऐसी शासन विधि की कल्पना ही नहीं कर सकती जिसमें सारा राष्ट्र सम्मिलित हो। कहने को तो बहुमत का शासन होता है, पर वह बहुमत वास्तव में अल्पमत होता है। अगर किसी राष्ट्र में 8 दल हैं और प्रत्येक दल के प्रतिनिधियों की संख्या 25 ही तक रह जाए, तो जिस दल की संख्या 26 होगी वह अधिकारी होगा। शेष 7 दल उसका विरोध करके उसे उखाड़ फेंकने की चेष्टा करते रहेंगे। मजा यह है कि ये 8 दल अपने भिन्न भिन्न सिद्धांतों के आधार पर खड़े होते हैं और अपने ही सिद्धांतों को देश के कल्याण के लिए उपयोगी समझते हैं। सबके अपने अपने देश सुधारक के प्रोग्राम हैं। एक मरीज के 8 चिकित्सक हैं। चाहिए तो यह था कि 8 आपस में सलाह करके रोगी का इलाज करते, लेकिन वहाँ प्रत्येक वैद्य अपने इलाज से रोगी की चिकित्सा करता है। एक वैद्य भी उसे स्वीकार नहीं करता कि उसके सिवा रोगी की चिकित्सा कोई दूसरा कर सकता है। मरीज इस परीक्षा में मरे या जिए, यह उसकी तकदीर है। यह एक दल कहता है अवैध व्यापार से देश का कल्याण होगा, दूसरा कहता है बिल्कुल गलत, इससे देश रसातल को चला जाएगा। बाहर से आने वाली वस्तुओं पर कर लगाना चाहिए। जाहिर है कि 2 मतों में एक अवश्य भ्रम मूलक है। 2 परस्पर विरोधी चीजें समान फल नहीं पैदा कर सकती, लेकिन पार्टी शासन में यह ताकत है कि वह विश्व को भी अमृत बना देता है। गौर करने की बात यह है कि जब राष्ट्र पर कोई संकट आ पड़ता है तो सभी दलों की अक्ल गुम हो जाती है और थोड़े दिनों के लिए दलबंदी स्थगित कर दी जाती है। यूरोपीय महाभारत के समय इंग्लैंड में किसी एक दल का शासन न होकर संयुक्त राष्ट्र का शासन था। उसने लड़ाई जीत ली। आजकल भी किसी एक दल का शासन नहीं, राष्ट्र राष्ट्र के सभी दलों का सम्मिलित शासन है। इस अवसर पर सम्मिलित शासन को वही सफलता होगी या नहीं, कोई नहीं कह सकता। पर उन महानुभाव के ध्यान में यह बात कभी नहीं आती कि जब सम्मिलित शासन से हम संकटों पर विजय पाने में सफल हो जाते हैं तो क्या साधारण अवस्थाओं में उससे विशेष उपकार न होगा। लेकिन जिन लोगों की प्रवृत्ति ही झगड़ालू हो, संघर्ष जिनकी घुट्टी में पड़ गया हो, उन्हें सत्य को स्वीकार करने का साहस कहां से आवे। सितंबर 1932।